प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 जुलाई 2017 के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए जिस विषय का मैंने चुनाव किया है इनफैक्ट वह विषय इनडायरेक्टली आप लोगों में से ही किसी एक के द्वारा सुझाया गया है या एक के द्वारा मैं क्यों कहूं, सच पूछे तो बहुत लंबे समय से मेरे पास इस समस्या से जुड़े हुए मेल लगातार आ रहे थे। भले ही वे दूसरे शब्दावली के तहत क्यों न पूछे जा रहे हों तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आज मुझे इस विषय पर अब बात करनी ही चाहिए और इसलिए भी मैंने इस विषय को चुना क्योंकि मुझे लगता है कि यह विषय हम सबसे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले पिछले सप्ताह हम लोगों ने मन पर एक लंबी बात की थी। सच पूछे तो आज का विषय कहीं न कहीं मन से भी जुड़ा हुआ है लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि यहां हम मन पर बात नहीं कर रहे, यहां मन ही सब कुछ नहीं है। हम कुछ उन दूसरी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे जो हमें लगातार मोटिवेटेड रख सके। कुल मिलाकर बात दोस्तों यह कि मेरे पास बहुत से इस बीच मेल आए हैं और उसमें लोगों ने अपने समस्या के तहत एक ही बात केंद्रीय रूप से कही है सार रूप में, और वो ये कि सर कुछ दिन तो जोश रहता है इसके बाद फिर हम ढीले पड़ जाते हैं, संकल्प लेते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते। तो इनडायरेक्ट में तो आप कह सकते हैं ये मन की कमजोरी है, लेकिन मैं इसे अब दूसरे तरीके से आज ले रहा हूं और खासकर मैं उस शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं जो शब्दावली आप सबके बीच यानी कि जो आज की हमारी यंग जनरेशन है उनके बीच काफी पॉपुलर है और वह शब्दावली है मित्रों मोटिवेशन का। यानी कि जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी जो मूल समस्या है वह यह है कि वो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सके। राइट, किसी की बात सुनकर या विचार करके ही, खुद अपनी ही बातें सुनकर उनको लगता है कि नहीं मुझे यह काम करना चाहिए, उस समय वो खूब जोश में आ जाते हैं और उस काम में लग भी जाते हैं, उसे अपने हाथ में ले लेते हैं और उस समय उनको लगता है कि नहीं मैं इस काम को कर सकता हूं, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, अब उनका ये जो डिसीजन है उसका आधार चाहे कोई भी क्यों न हो लेकिन अंततः वो इन्होंने एक फैसला ले लिया। कुछ दिनों तक वो बड़े जोश के साथ उसमें लगे भी रहते हैं लेकिन बस कुछ दिनों तक। देखिए जो सफल व्यक्ति है और असफल व्यक्ति है उसमें फर्क क्या है, मूलतः फर्क यही है कि जो सफल व्यक्ति वह है जो उस काम में लगातार लगा रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न पर लगा रहा है ना, वो फिर एक तार्किक पक्ष उसका अलग है कि अगर परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो उसने अपने सिस्टम को बदला, अपने को बदला, नए तौर तरीके लागू किए, वो एक अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा वह भी है। दूसरा यह है कि असफल व्यक्ति वह है जो कुछ समय तक लगा रहा और बाद में किसी कारण से छोड़ छाड़ करके अलग हो गया और अलग होने के लिए उसके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे तर्क उठे, बहुत अच्छे अच्छे उसने बहानों की खोज कर ली और वह उससे मुक्त हो गया। बस मूल अंतर यही है। तो मित्रों आइए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। या मुझे कुछ ऐसे मेल की भी या स्मृतियां आ रही हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है कि काफी पहले से मेरे पास इस तरह के मेल आ रहे थे, आते भी रहते हैं और मैं उनके अपने ढंग से जवाब भी देता रहता हूं। और वह ये कि सर मैं गांव में रहता हूं, क्या मैं गांव में रहकर आईएएस की तैयारी कर सकता हूं, इस तरह के मेल आते हैं, है ना। मैं छोटे शहर में रह रहा हूं, क्या यहां रहकर मैं तैयारी कर सकता हूं। देखिए अब इन सब से ही जुड़ा हुआ है इनफैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज का यह लाइफ मैनेजमेंट का विषय, और वह है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें। मोटिवेशन का मतलब क्या है मित्रों? मोटिवेशन का मतलब है प्रेरणा, यानी कि मेरे अंदर जो अभी ऊर्जा भभक रही है, ऊर्जा की आग जो जल रही है, लपटें उठ रही हैं, मैं अपने अंदर जो एक ताकत महसूस कर रहा हूं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है, मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं यह करूंगा, तो मैं लगातार कैसे इसी सिचुएशन में बना रहूं, है ना। अब ये जो मोटिवेशन आया है ये किसी भी वजह से आ गया, राइट, लेकिन ये पक्का है कि सबके साथ होता है कि कुछ समय के बाद जैसे पानी में उतार आएगा ही आएगा, आप आग की लपटें धीरे धीरे मंद होंगी ही होंगी, तो ये हमारी मानसिक स्थिति होती है कि हमारी सोच में भी या हमारी ऊर्जा में भी धीरे धीरे ढलान आती है, वो कम होने लगती है। लेकिन संकट वहां होता है जब वो इतनी कम हो जाए, इतनी कम हो जाए कि लगे ही नहीं कि यहां कभी लपटें भी थी, यानी कि वो राख में तब्दील हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सच्ची बात यह है कि जिंदगी के हमारे दो पक्ष होते हैं, एक तो आदर्श का पक्ष होता है और एक यथार्थ का पक्ष होता है। मित्रों, जिंदगी जो चलती है वो यथार्थ से चलती है। आदर्श तो केवल एक पाने के लिए चीजें होती हैं, या आदर्श को आप एक काल्पनिक पक्ष भी कह लीजिए, आदर्शवादी बातें कह लीजिए। जैसे कि जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम क्या, मैं क्या गांव में रह के आईएएस की तैयारी कर सकता हूं, और कुछ तो मेरे पास बड़े जोरदार मेल आते हैं और इस तरीके से कि मैं गांव से बाहर जा नहीं सकता हूं सर, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप करना चाहता हूं आईएएस में, इस तरह के मेल होते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि उनके अंदर जोश कितना है। लेकिन इस जोश के लिए जो यथार्थ परिस्थितियां चाहिए, क्या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं? क्या जोश मात्र से काम चल जाएगा? जोश के बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, लेकिन सिर्फ जोश से भी काम नहीं बनता है, उसके साथ और भी दूसरी चीजें चाहिए। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, खूब ऊर्जा है, तो क्या होगा? अगर मेरे पास मशीन ही नहीं है तो इस ऊर्जा का मैं क्या करूंगा? मुझे, मेरे पास मशीन होनी चाहिए, मशीन के साथ साथ फिर जो मुझे प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल होने हैं चाहिए वो हो, और फिर मैं उस रॉ मटेरियल को बराबर एक सही अनुपात में मिला करके और फिर मशीन में डाल करके और तब ऊर्जा उस मशीन तक पहुंचाऊं, तभी तो कुछ बनेगा। नहीं तो ऊर्जा है, मशीन भी है, रॉ मटेरियल है, तीनों अलग अलग पड़े हुए हैं, क्या बनेगा? तो ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इन चीजों को देखना, यथार्थ के हिसाब से निर्णय लेना है और यथार्थ को मिला करके परिणाम प्राप्त करना है। हमारी जिंदगी में दो चीजों की जरूरत होती है मित्रों, मुझे जो लगता है, एक है प्रेरणा और दूसरी है उत्तेजना। इन दोनों को मिलाकर के मैं एक तरह से यथार्थवादी मोटिवेशन कहता हूं। जो प्रेरणा है, देखिए प्रेरणा क्या है? प्रेरणा हृदय की वस्तु है, इसे आप आदर्शवादी मान सकते हैं कि मुझे कुछ बड़ा काम करने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए। वो प्रेरणा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी का ताना प्रेरणा हो सकता है, पिता की इच्छा प्रेरणा हो सकता है, किसी के प्रेम को पाने की लालसा, अभिलाषा, इच्छा प्रेरणा हो सकता है, अपने परिवार को बहुत ऊंचे स्थिति तक पहुंचा देना प्रेरणा हो सकती है। प्रेरणा किसी की भी, कुछ भी हो सकती है। यहां तक कि अगर मेरा साथी कुछ बहुत अच्छा कर जाता है तो उसके बराबर पहुंचने की प्रेरणा भी प्रेरणा हो सकती है। मतलब बहुत से रंग रूप हैं प्रेरणा के, कोई एक नहीं है। लेकिन हमको 10-20 की जरूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ एक की जरूरत होती है। अगर आप लोगों ने मेरे बहुत पहले के कुछ ऑडियो सुने हो तो यहां तक कि मेरे अंदर अगर कोई कुंठा है किसी बात की, तो उस कुंठा से निजात पाने की अभिलाषा भी एक प्रेरणा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और याद रखिए, अगर प्रेरणा सच्ची है, प्रेरणा गहरी है, प्रेरणा ज्वलंत है, मतलब बर्निंग है, आग की तरह जल रही है, तो एक ही सफिशियंट है। प्रेरणा का जमावड़ा नहीं चाहिए। एक प्रेरणा हमारी जिंदगी को बदल देने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन वो संपूर्ण होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं, खंडित नहीं। दूसरी जो बात होती है फ्रेंड्स, वो है उत्तेजना की। उत्तेजना का संबंध पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क से होता है। कोई ना कोई हमारे मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित करता रहे, ये जरूरी है, अदरवाइज मस्तिष्क डल पड़ने लगता है। आप देखते हैं कि जब बैलगाड़ी में बैल जुते होते हैं तो जो कोचवान है उन्हें कोचता रहता है। क्यों कोचता रहता है? ताकि उनको उत्तेजना मिलती रहे। जो बैल चल रहे हैं वो उनको ये लगता रहे कि नहीं भैया, हम चलना बंद नहीं कर सकते, हम सुस्ती के साथ भी नहीं चल सकते क्योंकि वो पीछे बैठा हुआ है, जरा भी हम सुस्त पड़ेंगे कि वो हमें कोचेगा, बेकार के दर्द होगा, तो ऐसा करो ही मत, चलते रहो। तो मित्रों, उत्तेजना चाहिए, मस्तिष्क को उत्तेजना चाहिए। मेरे मस्तिष्क के उत्तेजना का गलत अर्थ मत लगाइएगा, इसका संबंध नशा से नहीं है। उसे तो मस्तिष्क शुरू में आपको थोड़ी देर के लिए उत्तेजना दे देगा, बाद में धीरे धीरे डल पड़ता जाएगा, वो तो एक तरीके से स्लो पॉइजन है। मैं जिस उत्तेजना की बात कर रहा हूं उस उत्तेजना में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है मित्र वातावरण, कि आप कैसे वातावरण में रह रहे हैं। क्या वह वातावरण आपको चैलेंजेस प्रोवाइड करता है? उस वातावरण में रह करके क्या आपको कुछ चुनौतियां महसूस होती हैं या महसूस नहीं होती? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ऐसे डल वातावरण में रह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा जानता हूं, थोड़ा सा कर पाया हूं, मेरी सफलताएं बहुत छोटी छोटी सफलताएं हैं, लेकिन मैं अपने उस वातावरण में किंग बना हुआ हूं, राजा बना हुआ हूं, सर्वे सर्वा बना हुआ हूं, मेरे चारों तरफ प्रशंसाओं के स्वर गूंज रहे हैं, कसीदे काढ़े जा रहे हैं, लेकिन है ये बहुत छोटा, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कुएं का मेढक। मेढक को लगता है कि कुआं ही सब कुछ है, इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। फिर वो तालाब में पहुंचता है तो अच्छा चलो उससे बड़ा है, लेकिन अब तालाब से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जब समुद्र में पहुंचेगा तो जो समुद्र है वो आपको चुनौतियां देता है। किस तरह की चुनौतियां? बड़ा बनने की चुनौती, अपने को विस्तार देने की चुनौती, अपने को विस्तृत करने की चुनौती, कि ये सीमा नहीं है, जो आसमान है उसकी ऊंचाई अनंत है, देयर इज नो लिमिट। तो वहां से जो हमें चुनौती मिलती है, जो चैलेंजेस मिलते हैं, वो हमारे दिमाग को लगातार उकसाते रहते हैं, उत्तेजित करते रहते हैं, इसी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन प्रेरणा को मैंने थोड़ा सा एक दूसरे तथ्यों के अंतर्गत रखा है। तो मित्रों हमको दोनों ही चाहिए। अब आप देखिए कि जो अपेक्षाकृत जो बड़ी जगहें होती हैं वहां से लोग क्यों निकलते? जैसे मान लीजिए कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनना है, या फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाना है, म्यूजिक में जाना है, डायरेक्शन में, किसी में भी जाना है, और मैं तब अगर सोचूं कि नहीं मैं अपने गांव में रह करके ऐसा कर सकूंगा, तो संभव नहीं होगा ना। फिर तो मुझे उस जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वह जगह आपको लगातार उत्तेजित करता रहेगा। अच्छा ये लोग ये काम कर रहे हैं, अच्छा उसने ये बनाया है, मैं 10 लोगों से मिलूंगा, 20 लोगों से मिलूंगा, मैं उनके काम देखूंगा, उन्हें सुनूंगा, तो 2-4-5 साल तो मुझे अपने आप को एनरिच करने में लगेगा, उन चीजों को समझने में, समृद्ध करने में लगेगा, और वो लगातार मेरा मूल्यांकन करते रहेंगे, और मैं खुद भी अपना मूल्यांकन करता रहूंगा कि यार मैं तो अपने को बड़ा तोपचंद समझ रहा था, यहां तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो बट नेचुरल है कि मेरे अंदर की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं तो जागृत होगी, और फिर ये प्रेरणा और उत्तेजना मिलकर के आपको सोने ही नहीं देंगे, आप लगातार मोटिवेटेड ही होते रहेंगे, जैसे कि एक कोचवान बैल को सोने नहीं देता है। तो मित्रों आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, इसके लिए देखिए दो चीजें मैंने बताई हैं। पहली बात कि आप अपने अंदर अपने मकसद को किसी प्रेरणा से जोड़ दीजिए, अपने उद्देश्य को, चाहे कोई भी उद्देश्य जो आपने अपने लिए चुना है, आपके लिए वो उद्देश्य बड़ा है। और दूसरा फिर यह है कि आप ऐसे वातावरण को अपने लिए चुनिए जहां आपके मस्तिष्क को लगातार चैलेंजेस मिलते रहे, आपका मस्तिष्क उत्तेजित होता रहे, आपको आराम करने न दे, आपको चैन से बैठने न दे। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। एक मुझे महत्वपूर्ण आप सबको सूचना देनी है मित्रों, और वह सूचना यह कि जो FEIS की जो एंड्रॉइड ऐप है वो लॉन्च कर दी गई है। इसे आप या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पेज में सबसे नीचे भी यह उपलब्ध है, तो यह आपके लिए अब अधिक सुविधाजनक हो गई ही। तो मित्रों इसी सूचना के साथ अब मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।